ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर विंग का टॉपिक है, सेल्फ सॉवरेनिटी की टू सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर, स्वशासन सफल प्रशासन की कुंजी, उसके अंतर्गत आज का जो सेशन अब आरंभ होने वाला है, सेल्फ कंट्रोल की टू सेल्फ सॉवरेनिटी, स्व नियंत्रण से स्व प्रशासन की कुंजी, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे हमारे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नेहा दीदी जी। आपका संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। आप बाल्यकाल से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से परिवार सहित जुड़ी हुई है। आपने अपनी लौकिक पढ़ाई MA विद इंग्लिश लिटरेचर प्राप्त करने के पश्चात आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करते हुए पिछले 38 ईयर्स से आप अहमदाबाद जोनल हेडक्वार्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ साथ माउंट आबू इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ब्रह्मा कुमारीज में भी आप अनेक प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं। आप हमारी एडमिनिस्ट्रेटर विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर गुजरात क्षेत्र से आप कोऑर्डिनेटर हैं। तो मैं आदरणीय नेहा दीदी से निवेदन करती हूँ कि आज का जो विषय है कि हमारा स्व नियंत्रण हम कैसे करें। दूसरों को तो हम अच्छी तरह से नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी फेल हो जाते हैं। लेकिन उसके पूर्व स्वयं को हम कैसे नियंत्रण करें और उसी नियंत्रण के साथ हमारे अंदर प्रशासन खुद का स्वयं का हम कैसे कर सके, उसके ऊपर प्रकाश डाले। और बहनों से निवेदन, हमारी आदरणीय दीदी जी का पुष्प से और बैज से सम्मान करें। आदरणीय नेहा दीदी, धन्यवाद। आज ब्रह्मा कुमारी बहनों को अभी मैं दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि आज का वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप हम सभी इसको लाभान्वित करें। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर गीत बज रहा था कि मैं आत्मा अगर स्वयं पर शासन करना सीख जाएंगी तो हर एक पर शासन करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। तो आज के विषय की तरफ दृष्टिपात करते हुए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो किसी भी समाज, देश और विश्व के लिए प्रशासन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। देश का कोई भी क्षेत्र ले लो, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, औद्योगिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, हर एक क्षेत्र में प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है, प्रशासन उसकी नींव होती है। और जहाँ नींव मजबूत होती है, पावरफुल होती है, तो वो देश, वो क्षेत्र हमेशा प्रगति के शिखर को सर करते हैं। लेकिन प्रशासन के पीछे व्यक्ति छिपा हुआ है, व्यक्तियों के समूह से ही प्रशासन बनता है। तो अगर व्यक्ति अंदर से सशक्त है, एम्पावर्ड है, तो उसका प्रशासन भी उसी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। आप सब जानते हैं कि एक समय था जब भारत में सतयुग और त्रेता युग था, देवी देवताओं का राज्य था। उस समय प्रशासन उन राजाओं के हाथ में था, उन देवी देवताओं के हाथ में था। एक राजा सारी राजनीतिक और धार्मिक दोनों सत्ताओं को खुद संभालता था। एक राज्य था, एक धर्म था, एक भाषा थी, एक मत थी, एकता का साम्राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी थे। वो भी एक राज्य था, आज भी एक राज्य है। लेकिन वो राज्य जहां देवी देवताएं सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से सुशोभित थे, उनका जीवन दिव्यता का अवतार था। तो जब खुद इतने सक्षम थे तो उनका शासन भी इतना ही बेहतर था। इतने विद्वत थे कि उन्हें किसी सेक्रेटरी की या मंत्री की आवश्यकता नहीं रहती थी, अपने निर्णय खुद लेते थे, उतने वो सक्षम थे। तो वो देवी देवताएं देखने में तो हमारे जैसे ही है ना, रंग रूप हमारे जैसा ही है, लेकिन उन आत्माओं में वो वैल्यू सिस्टम थी, उन आत्माओं में वो संयम नियम का बल था जो शासन को, प्रशासन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता था। तो वो वैल्यू सिस्टम, वो स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन का आधार कैसे बने? हर एक व्यक्ति के जीवन में चार महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। एक होता है शारीरिक, दूसरा होता है मानसिक, तीसरा होता है सामाजिक और चौथा होता है आध्यात्मिक। तो हम अपने जीवन के तीन पहलू पर तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, अच्छी तरह से उसका रख रखाव करते हैं, शरीर को अच्छी डाइट देते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा फिट रखते हैं, मन को भी अच्छी तरह से समाज में, मार्केट में, प्रशासन में क्या चल रहा है उन सभी माहितियों से अप टू डेट रखते हैं, सोसाइटी में भी सोशल बने रहने के लिए सब प्रकार की एक्टिविटीज से, लोगों से जुड़े रहना पसंद करते हैं। लेकिन जो मिसिंग फैक्टर है वो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी पर जितना हमारा ध्यान होना चाहिए वो नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप न तो हम सेल्फ प्रशासन सही अर्थ में कर सकते हैं, न दूसरों पर अच्छी तरह से प्रशासन करा सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? आज तक हम रिलीजन, और स्पिरिचुअलिटी दोनों को एक समझते आए हैं। वास्तव में स्पिरिचुअलिटी का सीधा कनेक्शन हमारी आत्मा के साथ है और रिलीजन, जिस धर्म में हम विश्वास रखते हैं, जिसमें हमारी आस्था है, उनके नियम संयम को हम फॉलो करते हैं, वो हमारा धर्म है, वो हमारी धार्मिकता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो हमारी आत्मा से रिलेटेड है, हम हमेशा कहते हैं कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। कभी हमने ये नहीं कहा कि वी आर ह्यूमन डूइंग। तो जो बीइंग है वो सीधी आत्मा से कनेक्टेड है, वो बीइंग क्वालिटी हमारी स्पिरिचुअलिटी है। उस बीइंग में हमारी वैल्यू सिस्टम जुड़ी हुई है, हमारी अच्छाइयां जुड़ी हुई हैं, हमारी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। तो जितना हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप को लेते जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी को जितना हम डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनाते जाएंगे, उतना स्वयं को संयमित करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। मुझे याद है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जब पहली बार समुद्र यात्रा करने के लिए निकला, तो उस समय उसके पास कोई वर्ल्ड के मैप नहीं थे, नक्शे नहीं थे कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि कैसे जाना है। समुद्र यात्रा दरमियान समुद्री जीव, बड़े बड़े जीव जो उसकी यात्रा में बाधा रूप हो सकते हैं, वो भी उसे नहीं पता था। समुद्र में कहीं कहीं अंडर करंट एरियाज आते हैं, अगर व्यक्ति का जहाज उस अंडर करंट एरिया में फंस जाए तो डूबने की संभावना अधिकतर रहती है। उसे उसका भी नॉलेज नहीं था, उसके पास सिर्फ एक कंपास था जो उसे दिशा निर्देश कर रहा था और उसके आधार से वो आगे चल रहा था। यही एनालॉजी हम अपने जीवन की तरफ लेने की कोशिश करें कि हम भी अपनी इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी इस जीवन यात्रा में, चाहे पारिवारिक क्षेत्र से, चाहे हमारे प्रोफेशनल क्षेत्र से, चाहे किसी भी क्षेत्र से, चैलेंजिंग आ सकती है। और आने वाली चैलेंज के सामने मैं उसे कैसे फेस करूंगा या करूंगी, हमारे पास कोई एडवांस में प्रिपरेशन नहीं है। समंदर में अंडर करंट एरिया होते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन के भी कुछ अंडर करंट एरियाज है, हमारी वीकनेसेस, हमारी कमजोरियां जो हमारे इस मार्ग में बैरियर का काम कर सकती हैं। हमने उस पर भी ध्यान नहीं दिया है और हम अपने मंजिल पर चल पड़े हैं। कोलंबस के पास कंपास था जो उसे सही दिशा निर्देश कर सकता था, हमारे जीवन में वो कंपास था, वो कंपास हमारी वैल्यू सिस्टम थी, हमारी वो एसेट्स थी जिसको आज के जमाने में वो काम नहीं करेंगी ऐसा समझकर हम उसे छोड़ते गए। सच्चाई का जमाना नहीं है, अगर सच्चे होकर के चलेंगे ना तो लोग आपको साइड फेंक देंगे, सच्चाई को छोड़ दी। ईमानदार होकर के चलेंगे ना तो इस माहौल में चल नहीं पाएंगे, ईमानदारी को साइड में रखते चले। अब शांति से चलेंगे तो कोई आपका सुनेंगे नहीं, क्रोध और रोप तो चाहिए, शांति को साइड कर दिया। नम्रतापूर्ण व्यवहार साइड कर दिया, अपना ईगो स्टेटस नहीं दिखाएंगे तो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, लोग आपको सुनेंगे नहीं, ये समझ करके हमने नम्रता को साइड कर दिया। तो जो हमारी वैल्यू सिस्टम हमारा जीवन यात्रा में कंपस का काम कर रहा था, उसको हमने साइड कर दिया और रॉन्ग कंपस के आधार से हम अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी मंजिल पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम सही अर्थ में वहां पहुंच पाएंगे, ये समझने की आवश्यकता है कि जो वैल्यू सिस्टम हमारी एसेट्स हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं है, जो हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करती हैं, जो हमारे जीवन में हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार चीजें हैं, उसको साइड करके वो टेम्पररी हमें आगे बढ़ाने में मदद करने वाले हमारे ही अवगुण या हमारे ही वीकनेसेस को सहारा बना करके हम चलेंगे तो हम कभी भी अपने क्षेत्र में सफलता की सीढ़ी को सर नहीं कर पाएंगे। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वैल्यू सिस्टम जो हमारी एसेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुझे याद आ रहा है कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमें एक कहानी सुनाई जाती थी कि दो कठियारे थे, दोनों मित्र थे, जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। दोनों ने एक साथ मेहनत करना शुरू किया, इतना ही समय देते थे, इतनी मेहनत करते थे और उसी प्रकार से काम करते थे। लेकिन 7 दिन के बाद जो पहला मित्र था उसको उसका दूसरा मित्र पूछ रहा है कि हम दोनों इतनी मेहनत करते हैं, दोनों इतना समय देते हैं, शक्ति देते हैं, फिर भी पहले दिन जो मेरी भारी थी उसकी कंपेयर में लास्ट डे की मेरी भारी कम होती जा रही है और तुम्हारी भारी तो पहला दिन जितनी थी उतनी ही है, तो उसका कारण क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका मित्र उसको कहता है कि तुम सुबह काम पर आने से पहले अपनी कुल्हाड़ी की धार को कभी तेज करते हो? तो उसने कहा नहीं, वो तो मैं नहीं करता हूं। तो बोला यही कारण है तुम्हारी एफिशिएंसी डे बाय डे डाउन होती जा रही है। तो हम भी क्या कर रहे हैं, जब पहली बार आप अपने प्रोफेशन में आए, आपने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, याद करो उस दिन को, याद करो उस समय को, कितने हम एंथुजियास्टिक थे, कितने उमंग उत्साह से भरपूर थे। लेकिन वही उमंग उत्साह, वही एफिशिएंसी, उसको आज की कंपेयर में, आज कंपेयर करने जाओ तो कुछ डिफरेंस दिखाई देता है, कुछ डिफरेंस महसूस होता है कि उस समय हम कहां थे और आज हम कहां हैं। डे बाय डे हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है, उसका कारण क्या है कि उस समय हम बिल्कुल उमंग उत्साह से भरपूर थे, खुशी से भरपूर थे, कुछ नया करने का उमंग था, कुछ कर दिखाने की भावना थी। लेकिन करते करते कुछ चैलेंजेस आई, कुछ लोग ऐसे मिले, कुछ बातें ऐसी बनी, वो उमंग उत्साह खुशी, वो दृढ़ता, वो काम करने का जोश, सब कुछ धीरे धीरे कम होता जाता है। तो अगर ऐसे ही हमारी एफिशिएंसी डे बाय डे कम होती जाएंगी तो आगे चलकर हमारा क्या हाल हो सकता है। तो एफिशिएंसी हमारी बरकरार रखने के लिए स्पिरिचुअलिटी हमारी हेल्प करती है, स्पिरिचुअलिटी हमें उस क्षेत्र में बरकरार रखने में मदद करती है। आज के युग में लोग आईक्यू को नहीं देखते हैं। आप कितने भी अपने क्षेत्र में माहिर है, इंटेलिजेंट है, लेकिन आईक्यू के साथ साथ अगर हमारा ईक्यू लेवल इमोशनली हम आने वाली चैलेंजेस के साथ अपने आप को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं तो वो कंसीडर नहीं किया जाता है। इमोशनली स्टेबिलिटी कितनी हमारे जीवन में है वो बहुत मायने रखता है। तो आईक्यू के साथ आजकल ईक्यू पर हम जोर दे रहे हैं और ईक्यू बढ़ाने के लिए एसक्यू हमारा स्पिरिचुअल क्वांटम लेवल हमें मदद करेगा। तो स्पिरिचुअलिटी को भी हम अपने जीवन का एक बेस बनाएं, हमारी डे टू डे लाइफ का उसको जितना हम हिस्सा बनाते जाएंगे ना, तो यही स्पिरिचुअलिटी हमारे एफिशिएंस लेवल को बढ़ाने में हमें बहुत हद तक मदद करेंगी। क्योंकि आप सभी जानते हो कि हम किस जमाने में जी रहे हैं। देखो आज चारों तरफ तनाव का वातावरण है, भय का माहौल है, डर का माहौल है, कंपटीशन का जमाना है और ऐसे माहौल में हम जी रहे हैं सारे। और वैश्विक स्तर पर ये नेगेटिविटी का माहौल छाया हुआ है और जब वैश्विक स्तर पर वातावरण में वो नेगेटिविटी होती है और यहां पर भी वही नेगेटिविटी का भाव है, यहां से भी हम किसी बात में डर रहे हैं, भय में हैं, तनाव में हैं, चिंतित हैं, तो बाहर का वाइब्रेशन को अंतर की नेगेटिविटी आकर्षित करती है और जब वो चीज बाहर के वाइब्रेशन हमारे अंदर में भी वही चल रहा है तो नेगेटिविटी नेगेटिविटी को आकर्षित करती है और जब नेगेटिविटी नेगेटिविटी को आकर्षित करती है तो हमारी मानसिक हालत डे बाय डे और डाउन हो जाती है। बाहर नेगेटिविटी है तो इनसाइड पॉजिटिविटी का लेयर होना बहुत जरूरी है। आजकल आप देख रहे हैं 12 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं छोटी छोटी एज में। आज ये किस्से हम न्यूज़पेपर में सुन रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि बाहर नकारात्मकता है, यहां पर भी वही चल रहा है। कोई क्षण ऐसी आती है कि वो चीज हमें उस रॉन्ग डिसीजन को लेने के लिए मजबूर कर देती है। उस समय अगर हमारे पास पॉजिटिविटी है, हम अपने मन को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, तो इन परिस्थितियों से हम बाहर आ सकते हैं। लेकिन कभी हमने स्पिरिचुअलिटी को आधार ही नहीं बनाया है तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में अपने आप को संभालना और अपने आप को इस सिचुएशन में बाहर लाना हमारे लिए चैलेंज हो सकता है। इसीलिए ये स्पिरिचुअलिटी, ये आध्यात्मिकता हमारा बेस होना चाहिए। हम इनसाइड आउट आने चाहिए, आउटसाइड का प्रभाव इनसाइड पर नहीं पड़ना चाहिए। देखो बाहरी दुनिया में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगी, मार्केट अप्स एंड डाउन होगा, प्रशासन में ऊंचाई नीचाई होगी, आज हम यहां हैं कल कहां भेज देंगे, कल किस डिपार्टमेंट में भेज देंगे हमें पता नहीं है। तो बाहर में अनसर्टेनिटी बहुत है, अनिश्चितता बहुत है। अगर हम उसी को ही सहारा बनाएंगे कि ये हो गया, ऐसे हो गया, मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, वहां से मुझे ये हुआ, मेरे कलीग्स ऐसे मिले, हम किसी औरों पर ब्लेम करते गए तो ये चीजें तो डे बाय डे और बढ़ने वाली हैं। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है, प्रशासन की सिस्टम में अप्स एंड डाउन हो रहा है, राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है, हमारी सिचुएशंस अप्स एंड डाउन हो रही है, ये सब कुछ होने वाला है। इन पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। हमारा डायरेक्ट कंट्रोल हमारी इनसाइड कैपेबिलिटी पर है, हमारी आंतरिक क्षमताओं पर है, हमारी वैल्यू सिस्टम पर है, हमारी विशेषताओं पर है। अगर उस पर हम फोकस करते हैं, उसको बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, तो हम इनसाइड आउट आते हैं ना, अंदर से हम सक्षम हैं। बाहर का प्रभाव कितना भी पावरफुल हो, कितना भी नेगेटिव हो, हमें उसका असर नहीं होगा। अब प्रैक्टिकल में देखना कि कभी आप बहुत खुश हैं और किसी ने आपको टोंट में कुछ कह दिया, हम नजरअंदाज कर देंगे क्योंकि हम अंदर से खुश हैं ना, तो उनके एक शब्द का असर हमें ज्यादा नहीं होगा। लेकिन हम अंदर से थोड़े से डिप्रेस है, किसी ने एक शब्द ऐसा कह दिया, हमें इतना तीर की तरह लगता है कि बात मत पूछो। उस एक तीर के आधार पर हमारी मनसा इतनी चलती इतनी चलती इतनी चलती, 5 मिनट का, 1 सेकंड का वो सेंटेंस 5 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट तक भी कभी कभी व्यक्ति को ले जाता है। तो सोचो, अगर हम इनसाइड पावरफुल होंगे, इनसाइड अगर हम सक्षम होंगे, तो बाहर के प्रभाव से हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से बचा सकते हैं। देखो, बाहर से आने वाले जो भी चैलेंजेस है ना, वो सिर्फ 10% होती हैं। 90% रिसोर्सेस हमारे हाथ में हैं, लेकिन हम 90% को नहीं देखते हैं, उन 10% पर इतना फोकस करते हैं, इतना फोकस करते हैं, इतना ध्यान देते हैं कि सारे हमारी समय, शक्ति, एनर्जी उस 10% को मैनेज करने में ही खर्च हो जाती है। जो 90% हमारे पास इनसाइड है, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये अंदर की आंतरिक क्षमताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, आज भी आप मॉर्निंग में सेशन कर रहे थे, आत्मा के बारे में सुन रहे थे, तो कितनी अच्छी बात बताई कि आत्मा की 3 क्वालिटी हैं, 3 उसकी शक्तियां हैं, जो है मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन जो हमारी विचार शक्ति है, उसको समझना है, उसको देखना है, उसकी क्षमता को बढ़ाना है। अभी भी आपको विदा त्रिवेन एक्सरसाइज करा रही थी, मन को उन्होंने पॉजिटिव संकल्प दिए, मन को अच्छी दृश्य दिए, इमेज दी, 3 या 4 सेकंड भी आप उन विचारों में रहे, उस दृश्यों में रहे, तो आपकी फीलिंग कितनी हैप्पी फीलिंग थी। वो आप प्लकिंग कर रहे थे, फूल तोड़ रहे थे, तो आपको अंदर में जो महसूसता हो रही थी, वो कितना अच्छा लग रहा था। तो देखो, 3 सेकंड का सही अर्थ में सोचना, न सिर्फ सोचना, वो फील के साथ महसूस करना, अगर हमें सुकून का अनुभव करा सकता है, तो यही 3 सेकंड को हम 30 सेकंड तक ले जा सकते हैं, 30 सेकंड को हम 5 मिनट तक ले जा सकते हैं, 5 मिनट को हम 20 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। अगर इस प्रोसेस को जितना हम बढ़ाते जाएंगे ना, उतनी हमारी विचार शक्ति पॉजिटिव होती जाएंगी। आजकल बाहरी दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नकारात्मकता का वातावरण बहुत है, तो कुछ भी इंसिडेंट होता है ना, कोई परिस्थिति हमारे पर हावी होती है ना, परिस्थिति जब हमारे ऊपर आती है ना, तो पहला हमारा जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो जनरली नेगेटिव होता है। फर्स्ट रिस्पॉन्स नेगेटिव होता है, और जब सामने परिस्थिति आई, उसको हमें समझना है, फेस करना है. फेस करने में फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारा नेगेटिव हुआ तो परिस्थिति और क्रिटिकल होती जाएगी. सेकंड रिस्पॉन्स वो भी नेगेटिव हुआ तो परिस्थिति और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी. और परिस्थिति को विचारों के आधार से, पर्टिकुलरली नेगेटिव विचारों के आधार से हम कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे तो उसका समाधान हमें कैसे मिलेगा? समाधान नहीं मिलेगा तो उसी के ही चक्रव्यूह में हम अपने आप को फंसा लेंगे, उसमें से बाहर आने का मार्जिन हमें नहीं मिलेगा. समझो, सामने वाले ने गुस्सा किया, मैंने भी गुस्सा कर दिया, फिर उसने गुस्सा किया, मैंने भी फोर्स से कर दिया, तीसरी बार उसका गुस्सा आया, फिर तो हम दोनों आपे में नहीं रहते हैं. और परिस्थिति का समाधान चाहते थे, वो किसी बात का सलूशन चाहते थे, वो किसी बात को लेकर के आए थे, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स नेगेटिव हुआ, सामने से भी नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव. छोटी सी बात को हमने राई से पहाड़ बना दिया. अब राई को पहाड़ बना देंगे तो फिर तो उसका समाधान इम्पॉसिबल हो जाएगा. तो जब भी कोई परिस्थिति आती है, फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारा पॉजिटिव होना चाहिए. उसने गुस्सा किया, मैंने अपने आप को संभाला, शांति से आंसर दिया. अब वो तो ऑलरेडी गुस्से में है, वो दोबारा भी गुस्सा करेंगे, लेकिन दोबारा भी मैंने उसको शांति से जवाब दिया. तीसरी बार उसका बोलने का फोर्स कम हो जाएगा. और जब व्यक्ति को हम अपने लेवल पर ले आते हैं ना, वो इधर है और हम इधर है, लेकिन दो बार के रिस्पॉन्स से हम उसको इधर ले आए, दोनों का लेवल, विचार का लेवल सेम हो गया ना, तो हम एक दूसरे को समझ सकेंगे, एक दूसरे की बात का समाधान कर सकेंगे और सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट बनाने से बचा सकेंगे. इसलिए जब भी कोई परिस्थिति आती है, कोशिश करके फर्स्ट रिस्पॉन्स को कभी भी नेगेटिव नहीं बनाओ, उसको पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करो, तो उन परिस्थितियों में से बाहर आना हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा. जनरली कभी भी कुछ होता है ना, तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स नेगेटिव ही क्यों होता है? हम पॉजिटिवली क्यों रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं? उसका कारण क्या है? जनरली हम कभी भी कोई परिस्थिति क्रिएट होती है ना, तो हम उसको पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड नहीं करना सोचते हैं, नेगेटिवली ही रेस्पॉन्ड करते हैं. क्यों? क्योंकि आजकल चाहे न्यूज़पेपर खोलो, टीवी में खोलो न्यूज, कहीं पर भी आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिले ना, वो बहुत कम होता है, वो रेयर होता है. लेकिन नेगेटिव इंफॉर्मेशन बड़े बड़े अक्षरों में ब्लास्ट होती है. मीडिया वाले भी इतनी छोटी सी बात को इतने हाईलाइट करके नेगेटिवली हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, तो उन बातों का प्रभाव हमारे पर ज्यादा होता है. तो वो इंफॉर्मेशन का जो लेयर है ना, वो नेगेटिव हमारे पास आता है. और जब इंफॉर्मेशन का लेयर नेगेटिव है, तो ये पूरा एक चक्र है कि जैसा हमारा संकल्प होता है ना, वैसी हमारी फीलिंग बनती है. जैसी हमारी फीलिंग होती है, वैसा हमारा परसेप्शन बनता है, दृष्टिकोण बनता है. जैसा हमारा परसेप्शन होता है, वैसा हमारा बिहेवियर बनता है, व्यवहार बनता है. और वो व्यवहार बार बार अगर हम करते हैं ना, तो वो हमारी आदत बनती है, हमारी हैबिट बनती है. और बहुत सारी हैबिट का समूह हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाता है ना, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं. तो ये पूरा एक सर्कल है. जैसे हमारे संकल्प, वैसी फीलिंग, वैसा हमारा परसेप्शन, वैसा हमारा बिहेवियर, फिर वो हमारी हैबिट बनती है, और वही चीज फिर मेमोरी में संस्कार बन करके समा जाते हैं। अब सोचो, इंफॉर्मेशन का लेयर अगर हमारा नेगेटिव है तो पूरा चक्र नेगेटिव चलेगा, और बार बार अगर हम इंफॉर्मेशन के लेयर को नेगेटिव ही लेते जाएंगे तो जितनी बार संकल्प चलेंगे उतनी बार हमारा संस्कार का लेयर नेगेटिव चलेगा, और ऐसी बहुत सारी नेगेटिव आदतें संस्कार बनकर के हमारे अंदर में समाएंगी और हमारे संस्कारों की क्वालिटी फिर नेगेटिव ही होंगी। इसलिए हमें अपने इंफॉर्मेशन के लेयर को चेक करना है कि हम अपने को क्या फीडिंग दे रहे हैं। सुबह उठते ही आज सबको न्यूज़पेपर चाहिए, वहां भी नेगेटिव न्यूज, टीवी में भी नेगेटिव न्यूज, फिर वही बातें, ऑफिस में जाते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, शेयरिंग में भी वही चीजें बार बार चर्चा में आती हैं। तो जितनी बार हम उन्हीं बातों को चर्चा में लाते हैं, करते जाते हैं, तो वो चीजें नेगेटिव फीडिंग होकर के संस्कार को नेगेटिव बनाने में रिस्पॉन्सिबल बन जाती हैं। इसीलिए मैं आपको शुरू से कह रही हूं कि स्पिरिचुअलिटी को जितना हम अंडरलाइन करेंगे, पहला लेयर मॉर्निंग लेयर अगर फीडिंग हमारा पॉजिटिव होगा, फर्स्ट 2 घंटा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, और मॉर्निंग 2 घंटा फ्रेश माइंड में अगर आप स्पिरिचुअलिटी अच्छी बातें मन में डालेंगे ना, तो जैसा हमारा इनपुट होगा वैसा हमारा आउटपुट रहेगा। और मुझे इस बात का बहुत नशा है और खुशी भी है कि हमारी ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में हमारे जितने भी सेवा केंद्र है, जहां पर हमारे पास आपके जैसे भाई बहने रेगुलर बेस पे आते हैं स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस करने के लिए, तो उनको मॉर्निंग आधा घंटा हम मेडिटेशन कराते हैं और आधा पौना घंटा हम स्पिरिचुअल बातें सुनाते हैं। तो जब उनका फर्स्ट लेयर मॉर्निंग फर्स्ट लेयर स्पिरिचुअलिटी से भर जाता है ना, मेडिकल साइंस कहता है कि अगर आप 5 मिनट भी प्रॉपर वे में पॉजिटिव विचारों के आधार से मेडिटेशन करते हैं, 5 मिनट सही अर्थ में विधि पूर्वक, तो वो 5 मिनट का मेडिटेशन आपकी 2 घंटे की चार्जिंग को बढ़ा देता है। तो हम मॉर्निंग 1 घंटा 1.25 घंटा उनको यही स्पिरिचुअलिटी बेस के रूप में देते हैं, और जब वो बेस के द्वारा अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो उनके सारे दिन में आउटपुट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सुबह सुबह जो चीजें पावरफुल अंदर गई है ना, वो चीजें सारे दिन की दिनचर्या में उनको हेल्प करती हैं, और वो बहुत अच्छी तरह से अपने लाइफ की क्वालिटी को सेल्फ कंट्रोल के द्वारा अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अपना मॉर्निंग लेयर और एक रात का सोने से पहले का लेयर, 2 लेयर को आप प्रैक्टिस करके पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। जनरली क्या होता है कि रात को हम सो जाते हैं ना, तो जो लास्ट लेयर होता है ना वो नेगेटिव होता है। लोग क्या करते हैं, टीवी में कुछ मार धाड़ वाली सीरियलें जो होते हैं या कुछ फिल्म देखते हैं या कुछ ऐसे मोबाइल में कुछ ऐसी चीजें देखते हैं या फिर कुछ ऐसी क्रिटिकल घर में ऐसी सिचुएशन हुई है और उसी सिचुएशन का बेस बना करके सोते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि फिजिकली हम लोग सोए हैं, लेकिन जो लेटेस्ट में बातें अंदर गई है ना, वो सबकॉन्शियस में चलती रहती हैं, और सबकॉन्शियस में सारी रात चलती रहेंगी, मॉर्निंग आप उठेंगे तो वो फ्रेशनेस नहीं फील होगी। आप सोचेंगे कि 6 घंटा तो सोए, 8 घंटा तो सोए, लेकिन वो फ्रेशनेस नहीं है। उसका कारण ये है कि फिजिकली आप सोए हैं, मेंटली आपका माइंड आपने साइलेंट नहीं किया है, सबकॉन्शियस को साइलेंट नहीं किया है, तो उसने तो आपको सोने नहीं दिया। तो सोने से पहले सारे दिन की दिनचर्या को एक बार चेक करें, चेकलिस्ट करें कि आज के दिन में क्या क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, उसके लिए उन सुप्रीम पावर का थैंक्स करें, ग्रेटिट्यूड फील करें, और जो चीजें हमारे से कुछ गलत हुई हैं, कुछ अंडरलाइन करने की आवश्यकता है, कुछ सुधार की आवश्यकता है, उसको भी माइंड के स्क्रीन पर लाओ, उसको ठीक करने के लिए अपने आप को तैयार करो, और नेक्स्ट डे के लिए आपको जो कुछ भी अच्छे काम करने हैं, जो कुछ प्लानिंग करनी है, उसके लिए मन को रात से ही तैयार करो, और फिर परमात्मा का थैंक्स करते हुए आराम से मन को काम और कूल करते हुए सो जाएंगे ना, तो वो साउंड स्लीप, आप 2 घंटा भी सोएंगे ना तो भी आपको 4 घंटे की चार्जिंग देगा। तो ये एक विधि है कि अपने आप को स्पिरिचुअली एम्पावर्ड करने की, मॉर्निंग लेयर को ठीक करें, रात के लेयर को ठीक करें, और फिर मॉर्निंग और इवनिंग लेयर ठीक होगा तो दिन भर में भी वो इनपुट आउटपुट आपको हर प्रकार से मदद करेगा। तो यहां पर आप लोग 2-3 दिन रहेंगे, मेडिटेशन का भी एक सेशन आपका रहेगा, तो उस मेडिटेशन के सेशन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हुए एक दृढ़ संकल्प के साथ यहां से जाएंगे ना, तो वो चीज आपके जीवन में आपको हेल्प करेंगी। जैसे फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए 3 चीजें आवश्यक है ना, ऐसे मेंटली भी अपने आप को ठीक करने के लिए 3 चीजें चाहिए, अच्छे विचारों की क्वालिटी, विचारों का मनन चिंतन, और तीसरा मेडिटेशन। अगर 3 चीज आपने माइंड को दे दिया तो माइंड भी हमारा हेल्दी हो जाएगा। तो अभी ये 2 चीजों को जीवन में लेने के संकल्प के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत ही सुंदर रीति से आपने आज के टॉपिक पर फोकस दिया दीदी, आपका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। अभी हम सभी के बीच में आज अनुभव शेयर करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सालविया, वाइस चांसलर रिसर्च इनोवेशन स्टार्टअप यूनिवर्सिटी रजिस्टर इंदौर मध्य प्रदेश। आप बहुत ही दयालु दिल वाले हैं और आप अपने सोशल एंड प्रोफेशनल डिस्टिंग्विश्ड एजुकेशनलिस्ट व्यक्तित्व आप उस फील्ड के हैं। आपका एक ही लक्ष्य और उद्देश्य है कि समाज में हर एक मानव हेल्दी वेल्दी और हैप्पी कैसे रहे, ईमानदार वफादारी से कैसे अपना जीवन व्यतीत करे, और निरंतर इस समाज की सेवा के अनुरूप आपको कई इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो हमारे बीच हमारे भ्राता विजय भाई उपस्थित है, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ में आप 35 साल से समाज की सेवाओं के लिए आप परमात्मा को बहुत ही दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। आज मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज के टॉपिक के अनुसंधान में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी को मेरा नमस्कार। बाबा के चरणों में नमन करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आज प्रशासनिक विंग में इकट्ठे हुए हैं कि कुछ यहां से पॉजिटिविटी ले और हमारा जीवन सुदृढ़ हो और साथ में हम संसार में कुछ अच्छा कर सिखाए। तो सबसे पहले तो ये पुण्य जगह जो हमारा अरावली पर्वत, आबू पर्वत, ये अपने आप में इसकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो यह सबसे इतना पुण्य है कि यहाँ पे बार बार आने का मन करता है। और जब यहाँ से हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि न जाने कहाँ खो गए थे। जैसे कि पिछले अपने अनुभव को मैं देखता हूँ तो पिछले 30 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और जब भी यहाँ से बाहर जाता हूँ तो वहाँ की जो निगेटिविटी और लोगों के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, बहुत सारी नकारात्मकता, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है हमारे पास सामने, और वहां पे हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। कई बार जो है हम सेंटर में जाते हैं तो वहां से फिर पॉजिटिविटी मिलती है। तो इस तरीके से अगर मैं अपने अनुभव शेयर करूं तो जैसे कि हमारा रिसर्च इनोवेशन स्टार्टअप यूनिवर्सिटी, जो कि प्रशासनिक विंग के साथ में, पुलिस विंग के साथ में और मंत्रियों के साथ, इसके अलावा जितने भी हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज है उसमें इंटरनेशनल आरएनडी क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम लोग हैप्पीनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हैप्पीनेस क्लब इंटरनेशनल जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, एसडीजी क्लब इंडिया इंटरनेशनल जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पीस एसडीजी यूएनओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूएनओ, उसमें पीस सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इनोवेशंस और सारे रिसर्च को लेते हुए किस तरीके से हमें समाज को आगे बढ़ाना है, वहां पे मैंने ब्रह्मा कुमारी से, ब्रह्मा कुमारी के 30 साल के अनुभव से बहुत शक्ति प्राप्त की रही है। मैं भी एक सामान्य सा लड़का था, बिल्कुल मतलब जहां पे ये मान के चलिए कि एक मध्यम वर्गीय, और जब हमने धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो फिर भावना आई कि भाई क्या होता है, क्या पढ़ाई करना चाहिए, तो लगा कि भाई आईएएस ही सबसे, उस समय तो आज से 30 साल पहले तो आईएएस और आईपीएस और यही सब था, तो हमने भी सोचा कि चलो आईएएस आईपीएस करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, इंजीनियरिंग की कॉम्प्लेक्सिटी उस समय तो इंजीनियरिंग करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी, तो इंजीनियरिंग करा तो वहां की कॉम्प्लेक्सिटीज और वहां का तनाव, वहां का पढ़ना लिखना और फिर वो समाज में अप्लाई करना, तो इंजीनियरिंग लाइन अलग होती है, साइंस और सोशल लाइन अलग होती है। वहां पे फिर हम ब्रह्मा कुमारी के जब मेडिटेशंस और वहां के जो सेल्फ कंट्रोल की बातों को जब सीखते हैं, समझते हैं, तो समझ में आता है कि इसको अप्लाई कहां करना है। फिर उसके बाद जब हम आईएएस और ये सब की बात करते हैं तो लोग 5-5, 6-6 साल लगा देते हैं। हम 2 साल में हम जो है यूपीएससी पीएससी के इंटरव्यू पहुंचे, लेकिन कुछ व्यावहारिक कारणों से सिलेक्शन नहीं हो पाए। तो फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, लोगों के ताने से ना कि बड़ा इंजीनियर बन के आईएएस की तैयारी करने गया था, आ गए ना नीचे वापस से, सांप सीढ़ी का खेल रहता है वो तो पूरा। तो फिर एक मन में कि दुनिया को पता लग गया आईएएस की तैयारी कर रहा है, अब क्या करें, डिप्रेशन ये सब, लेकिन नहीं, 2 साल दिए बस, बहुत हटाओ, अब नहीं करना, हो गया। इसके बाद फिर उस लेवल पे आना, उस वापस से एक इंजीनियरिंग के लेवल पे आना, फिर हमने एग्जीक्यूटिव डिफरेंट कंपनीज और साथ में फिर टीचिंग लाइन को पकड़ा, टीचिंग लाइन में फिर लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, प्रोफेसर, फिर इसके अलावा फिर डायरेक्टर, प्रिंसिपल, और इस तरीके से हम डायरेक्टर जनरल और ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ में काम करते रहे। तो आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट और आज किसी भी संस्था में देख लो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, सचिव हो, सबको प्रेशर है, सबको प्रेशर है कहीं ना कहीं। और जब टीचिंग लाइन में जब आर्मी के लोग आ जाते हैं, आजकल आर्मी के लोग ज्यादा है उसमें, तो वो उनके साथ एडजस्ट करना, हमारे एक एचओडी रहे थे आर्मी से, तो वो उस समय हमको आर्मी की तरह ट्रीट करते थे। और एक टीचिंग लाइन जो होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है कि वहां पे पढ़ाना है, लोगों को समझाना है, लेकिन जब आर्मी का कोई आदमी आ जाता है और वो उस तरीके से काम करवाते हैं तो टीचर को ऐसा लगता है कि ये कहां आ गए। लेकिन उस समय में भी ये मेडिटेशन और ब्रह्मा कुमारी इसका सेल्फ कंट्रोल काम आता है। और ऐसे में अगर आपकी फैमिली हो तो फैमिली के साथ एडजस्टमेंट, जब फैमिली भी कैसी हो कि जब आपके घर में आपकी पत्नी जो है नॉन टीचिंग हो, तो नॉन टीचिंग के साथ में एडजस्टमेंट, नॉन टीचिंग और नॉन टेक्निकल के साथ में एडजस्टमेंट, मतलब मैं टेक्निकल और मेरी वाइफ अगर नॉन टेक्निकल है तो बताओ उसमें कितना डिफरेंस है, क्योंकि वो अलग चलती है और हम अलग चलते हैं। और फिर उसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ में हमारे सामान्य जीवन को आगे बढ़ाना, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आईओटी आ गया, ये ऐसे बड़े बड़े शब्द आ गए हैं जो कि हमारी हमारे पीस को, हमारे मेंटल पीस को खराब करने पर तुले हुए हैं, लेकिन ये इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, वो टेक्नोलॉजी जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है डायरेक्शन उस लेवल पर नहीं जा रहा है। ऐसे ही चाहे वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव विंग हो, मिनिस्ट्री विंग हो, सबके ऊपर प्रेशर है। और सीधी सी बात आती है कि सारे के सारे अथॉरिटीज को नीचे की ओर सरकाना, कि ऊपर वाले ने, बड़े ऑफिसर ने नीचे को दे दिया, नीचे ने उसके नीचे को दे दिया, और इस तरीके से वो चला रहा है। और जब क्वेश्चन आता है कुछ काम करने का तो प्रेशर बढ़ जाता है कि अब करेगा कौन, क्योंकि सभी नीचे की ओर फॉरवर्ड। तो ये सारी की सारी जब चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस क्वालिटेटिव प्लस टेक्निकल प्लस सोशल, ये चारों के चारों का जब हमारे पर प्रेशर पड़ता है तो फिर कुछ लगता है कि कोई ना कोई एक शक्ति चाहिए जो हमें हेल्प करे। वो हेल्प हमें मिलती है ब्रह्मा कुमारी से, वो हेल्प हमें मिलती है मेडिटेशन से, वो हेल्प हमें मिलती है हमारे सेल्फ कंट्रोल से। क्योंकि जब हम ये सारे प्रेशर्स लेके चलते हैं तो उसके बाद फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि दिमाग में हमारे मन में रहता है कि हमारे जो लोअर जो जूनियर स्टाफ है हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन अब आजकल मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, एसएमएस मैसेज आ गए, व्हाट्सएप पे देखो तो इतने सारे ग्रुप, मैं खुद 300 ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं, फेसबुक पे करीब 10 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अब इन सबको मैनेज करना हाउ, और ऊपर से फिर पर्सनल मैसेज, वो 300 ग्रुप में से अब 1000 की लिमिट हो गई है, तो 3 लाख लोग आपके मोबाइल से जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर जो है वो पर्सनल मैसेज, कोई आपने कुछ मैसेज किसी ग्रुप में डाला तो फिर एक एक का मैसेज देखो, और फिर उसको फिर रिप्लाई भी करो। तो काम करेंगे कि रिप्लाई करेंगे कि घर को देखेंगे, क्या करेंगे? आदमी तो गया ऊपर से नीचे सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे के तक ही वो काम करेगा, उसके बाद तो सोना बहुत जरूरी है। तो यहां पे आता है सेल्फ कंट्रोल, योर सोशल, योर इमोशनल, फिर इसमें बच्चे की पढ़ाई, पापा ये पापा वो, उधर बिजनेस कि अब क्या करना है, ये क्या वो क्या, आलू बनाए कि गोभी बनाए आज, ये साड़ी खरीदना है, वो मार्केट चलना है, ये सब होता है। तो वेरी कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें भी फिर आता है अपने आप को बाइफर्केट करना है कि कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है, और ये सब आता है मेडिटेशन से, अपनी लाइफ को सुचारू रूप से। जितना आप पर्यावरण के अनुकूल काम करेंगे, जितना आप सिंपल वे में काम करेंगे, उतना आपको आपके माइंड को रिलैक्स मिलेगा और आपको पॉजिटिव डायरेक्शंस मिलेंगे। मैं अभी 15 दिन से दिल्ली में था, एटमॉस्फेयर बहुत गर्म, आप एसी चला रहे हैं, गाड़ी बजा रहे हैं उसके बावजूद, लेकिन मैं जब घूम रहा था वहां पे तो ग्रेटर नोएडा में मुझे एसीपी साहब के वहां पे ब्रह्मा कुमारी का आश्रम दिखा, वहां पे उनका सेंटर दिखा, ऐसा लगा कि रेगिस्तान में कोई बूंद दिख गई हो। इतनी कड़कड़ाती गर्मी और इतना ऐसा एटमॉस्फेयर, और उसमें अगर आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट से मिल रहे हो और फिर ऐसे में अगर आपको कोई मिल जाए, तो मैंने कहा कि जय हो, और वो भी एसीपी साहब के यहां पे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव विंग और जो हमारा जो कार्यपालक और मैनेजर्स का विंग है, बात करने को बहुत कुछ है, लेकिन ये सब सारी की सारी चीजें हमको कुछ पॉजिटिविटी देती है, एक शक्ति देती है। कल रात को, आज सुबह 4 बजे में आया, रात भर कोई नींद नहीं, लेकिन जैसे ही मैं यहां इस क्षेत्र में आया और 4 बजे जैसे ही वो मेडिटेशन चालू हुआ, मैं उसके बाद से लगा ही नहीं कि मैं जो है रात को सोया कि नहीं सोया, क्या हुआ। तो ये सब चीजें हैं, बाकी कहने को बहुत कुछ है। थैंक यू वेरी मच, और आप लोग साथ में काम करें, हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। धन्यवाद भ्राता डॉक्टर विजय भाई, बहुत ही सुंदर बात आपने बताई कि सबसे महत्व स्थान है माउंट आबू और इसकी विशेषता बहुत है। तो आज शाम को सेशन रहेगा हमारे वरिष्ठ भ्राता ब्रिजवन भाई जी, उसके ऊपर आप हम सभी को वो लाभान्वित करेंगे, क्योंकि माउंट आबू क्या है वो उस सेशन में बताएंगे। दूसरी बात, आपने मेडिटेशन की बात बताई, तो मेडिटेशन ही है जहाँ सभी समस्याओं का समाधान, सभी कारणों का निवारण हो सकता है। जहाँ आत्मा को मन का सुकून प्राप्त होता है, जहाँ एक मंजिल मिल जाती है, एक मार्ग मिलता है जो हम पूरे भौतिकता में खोज रहे थे। तो आइए 5 मिनट के लिए मैं दीदी से निवेदन करती हूँ कि हमें उस यात्रा पर ले जाए जहाँ असीम शांति का हम आंतरिक अनुभव करें। ओम शांति।
ओम शांति। कुछ क्षणों के लिए हम सभी एक अंतर यात्रा पर चलते हैं। अपने आप को देखो, मैं कौन, इस शरीर रूपी राज्य का राजा आत्मा हूं। मैं आत्मा रूपी राजा अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान हूं। भ्रुकुटी के स्थान पर जहां आप तिलक करते हो, उस स्थान पर चमकती हुई आत्मा राजा को बैठी हुई महसूस करो। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ये मन मेरा मंत्री है। बुद्धि मेरी गृह मंत्री है। संस्कार मेरे कार्यभारी मंत्री है। तीनों मेरे आदेश के मुताबिक चलते हैं। मेरा मन मेरा कहना मान रहा है। हे मन, तुम शांत हो जाओ। मेरे विचारों की क्वालिटी सकारात्मक हो रही है। मेरे विचार बुद्धि के पास जा रहे हैं। बुद्धि अपनी दिव्यता के आधार पर सही निर्णय दे रही है और वही विचार मेरे भविष्य के संस्कार बन रहे हैं। ये तीनों कर्मचारी मेरे आदेश अनुसार चल रहे हैं। तीनों पर मेरा सही अर्थ में प्रशासन है। मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ। मैं अपनी सीट पर सेट हूँ। मैं आत्मा अपनी वैल्यू सिस्टम से भरपूर हूँ। सर्व गुण और शक्तियाँ मुझ आत्मा में समाई हुई हैं। परमपिता परमात्मा जो सर्व शक्तियों का स्रोत है, उनसे सकारात्मक शक्तियों का स्रोत लगातार मुझ आत्मा को मिल रहा है। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। बस आज से मैं आत्मा अपने आसन पर स्थित रह करके अपने गुण और विशेषताओं के आधार से अपनी तीनों शक्तियों के द्वारा अपना कारोबार करूंगी और सही अर्थ में स्वराज अधिकारी बन के दिखाऊंगी। ओम शांति शांति।